क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर ध्रुवराज सिरतन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। आज के लिए जो विषय रखा गया है वो है हिंदी की कथा यात्रा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे मध्य में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी आए हुए हैं। आप भारत से हैं, आप एक विशेष संदर्भ में मॉरिशस आए हुए हैं। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के बारे में दो शब्द। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी भारत के प्रसिद्ध हिंदी लेखक, उपन्यासकार और व्यंगकार हैं। इसके अलावा आप भोपाल, भारत के चिकित्सा विशेषज्ञ एवं कार्डियो फिजिशियन भी हैं। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व दो रूपों में देखा जा रहा है। सबसे पहले चिकित्सा की बात करें, आप मेडिकल कॉलेज रीवा से MBBS पास हैं। आपने कस्तूरबा अस्पताल भोपाल में 32 सालों तक चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में
MD भी किया है। MBBS के बाद MD ठीक है जी।
आप सेवा प्रदान करते रहे। आप डायबिटिक क्लिनिक एवं कार्डियोलॉजी विभाग के प्रभारी और कस्तूरबा अस्पताल के DNB समायोजक रह चुके हैं। और साल 2012 में आपने कस्तूरबा अस्पताल भोपाल से महाप्रबंधक एवं चीफ मेडिकल सर्विस पद से आप सेवानिवृत्त हुए। आप प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं व्यंगकार भी हैं। आपके कई उपन्यास छपे हुए हैं, इनमें धर्मगुरु, नरक यात्रा, बारामासी, मरीचिका, हम नमरब आदि। आपके अनेक व्यंग रचनाएं भी छपी हुई हैं, जैसे कि प्रेत कथा, दंगे में मुर्गा, रंदा, मेरी 51 व्यंग रचनाएं, प्रतिनिधि व्यंग आदि। भारत सरकार की ओर से साल 2015 में आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा आपको कई अन्य अवार्ड भी प्रदान किए गए, जैसे नेशनल शरद जोशी अवार्ड, नेशनल सतय अवार्ड, यश भारती सम्मान, अमेरिका से डिंगरा फाउंडेशन अवार्ड आदि। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी नमस्कार।
नमस्ते सर, नमस्ते।
MBC के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप किस संदर्भ में मॉरिशस आए हुए हैं?
मैं मॉरिशस आया हूँ, इसी बच्चों का एक वर्कशॉप आयोजित किया गया है विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा, दो दिवसीय, कहानी को लेकर। कहानी को कैसे विश्लेषित करते हैं, कहानी को कैसे बच्चे समझें, कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी के अंतर क्या वो चीज़ें हैं जिससे हम अगर उनको लेके उतरेंगे तो कहानी लिखने की कला को और उस कहानी के मर्म तक हम पहुंचेंगे। इन सारी बातों को करने के लिए बच्चों के साथ एक क्रिएटिव राइटर के तौर पर मैं उनसे एक बहुत ही अलग कोण से बात करना चाहता था, जिसके लिए मैं आया हूं। और ये 6 सत्रों में बात हुई है, अभी 2 दिनों हो और अद्भुत हुई है
जी।
बच्चे बड़े संवेदनशील हैं, कहानी को बहुत समझ रखते हैं और मुझे लगता है कि मेरा आना यहाँ सार्थक हुआ, क्योंकि मैंने जो बच्चों से बात की है उनके प्रश्नों से जाहिर हुआ बाद में, जब हम प्रश्न का उनको अनुमति दिए बाद में कि आप पूछिए अब हमसे, कि उन्होंने जो बातें, मैंने बहुत अपने हिसाब से बड़ी गहरी बातें की थी, वो उन तक पहुँची हैं। तो इसका लाभ निश्चित ही इन बच्चों को मिलेगा, हिंदी भाषा को मिलेगा, क्योंकि यही आगे चल के हिंदी भाषा के पैरोकार लोग बनेंगे
जी।
तो मैं उस काम के लिए आया आज।
अच्छा डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब आप न केवल भारत के बल्कि विश्व के उन दुर्लभ एवं गिने चुने लोगों में से हैं जो चिकित्सक स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ होते हुए भी आप हिंदी लेखन से जुड़े रहे। चिकित्सा और हिंदी में लेखन का मेल कम देखने को मिलता है, वो कैसे हुआ?
देखिए, दोनों का मेल इसलिए कम देखने को मिलता है कि दोनों बहुत व्यस्त रखने वाली विधाएं हैं। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे समय कहाँ है, लोगों तो परिवार के लिए समय नहीं मिलता लिखने के बाद। पर आपको लिखने का जो पैशन, जिसे आप कहते हैं पैशन, जो आप कहते हैं, एक पागलपन लिखने के लिए, वो आप में बहुत ज़रूरी है, और आप में एक पागलपन ज़रूरी है डॉक्टरी के लिए भी, तब आप दोनों को उस तरह साध पाते हैं जैसा मैंने साधा। मेरे में दोनों के लिए बहुत पागलपन है और वो अभी तक बरकरार है, वो उम्र के साथ समाप्त नहीं हुआ। अभी भी मेरे पास लिखे बिना चैन नहीं और मरीज देखे बिना चैन नहीं। मैं रिटायर ज़रूर हो गया हूँ पर वहाँ पर एक नोबल हॉस्पिटल है, बड़ा सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ का मैं चीफ फिजिशियन हूँ, तो वहाँ काम करता हूँ, साथ में लिखता हूँ, और जब तक दोनों ना कर लूँ जीवन की सार्थकता का अनुभव नहीं होता, वो दिन वेस्ट चला जाता है जिस दिन ऐसा ना कर पाऊँ। तो इस भावना के कारण मुझे लगता है मेरे अंदर जो ये पैशन है, इस कारण मैं दोनों चीज़ों को आज तक निभा पाया साथ साथ।
डॉक्टर साहब, आज के हमारे मुख्य विषय पर आते हैं, वो है हिंदी की कथा यात्रा। हिंदी की कथा यात्रा 150 साल पहले शुरू हुई थी और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इतिहास लेखकों ने कहानी के विकास की परंपरा को प्रसाद स्कूल, प्रेमचंद स्कूल, जैनेन्द्र स्कूल, अज्ञेय स्कूल और यशपाल स्कूल के कटघरे में विभाजित किया। आपके क्या विचार है?
ये जो चारों स्कूल आप बता रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे स्कूल आए, क्योंकि ये सारे स्वतंत्रता के पूर्व के स्कूल हैं। जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब इस तरह की कहानियां, पर इन सारे कहानियों का, गे हो, यशपाल हो, जैनेन्द्र कुमार हो, प्रेमचंद हो, इनकी कहानी का एक मूल स्वर एक आदर्शवादी समाज की स्थापना को लेकर है। समाज की कुरूतियों के विरुद्ध, समाज में जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध, एक प्रगतिशील धारा का भी इन पर असर है, इन सभी लोगों पर। पर इसके बाद, ये तो सब आज़ादी के पहले की बातें हैं, आज़ादी के बाद नई कहानी का एक बहुत बड़ा आंदोलन आया, जिसमें कमलेश्वर आए, शेखर जोशी आए, राजेंद्र यादव आए, मोहन राकेश आए, निर्मल वर्मा आए। ये एक बड़ा लंबा कहानी का युग चला, करीब 20 साल। और उसके बाद फिर राजेंद्र यादव ने एक पत्रिका निकाली हंस, जिसके जरिए बहुत सारे दलित और स्त्री लेखन को बढ़ावा मिला, और दलित और स्त्री इस विषय पर बहुत एक आंदोलन की तरह चला, वो भी काफ़ी दिनों चला। और अब बिल्कुल जब ये नया संसार ही दुनिया में है, जो हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद का समय जो है, जब दुनिया पूरी ही बदल गई, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा, मॉरिशस मॉरिशस रहा, सब एक हो गए और सब एक नहीं भी रहे, ये जो दुनिया है आज, हाँ, जो बाजारवाद वाली दुनिया है, इसकी कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो कहानी का एक लंबा दौर है जो 150 साल से चला, जो प्रेमचंद और जितने स्कूल आपने बताए वहाँ से चल के ये यहाँ तक 150 साल में पहुँचा है। क्योंकि दुनिया बदली है तो कहानी भी बदलेगी,
जरूर
समय बदला है तो कहानी भी बदलेगी,
व्यक्ति का जीवन,
हाँ, तो जब जब समाज बदला है तो कहानी भी बदलेगी। क्यों? अंततः जब आप कहते हो कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो जब दृश्य बदल गया तो दर्पण में दिखने वाला दृश्य भी बदल गया। तो ये चीज़ें बदली हैं, समाज बदला है, दुनिया बदली है, मनुष्य बदला है, समाज के सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, जो विडम्बनाएँ हैं सब बदली हैं। कुछ मूल विडम्बनाएँ वही रहेंगी, मूल मनुष्य वही रहेगा, तो कहानी में एक मूल तत्व तो वही रहेगा, पर चीज़ें बदलती जाएंगी धीरे धीरे। तो वो आप इस विकास यात्रा में कहानी के, हिंदी कहानी में बखूबी देख सकते हैं, प्रेमचंद से लेके जो आज के युवा रचनाकार जो लिख रहे हैं उन तक की कहानी में बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ वही रहा है। और एक ये कथा यात्रा सारे बाधाओं के नहीं कहूँगा, सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, दुनिया की कहानी को समझते हुए, दुनिया की कविता को समझते हुए, अन्य भाषाओं के बरक्स बहुत खूबसूरती से हिंदी की कथा यात्रा आगे बढ़ी, और हमें इस पर गर्व है जी।
इस कथा यात्रा में कथा सम्राट प्रेमचंद की भूमिका पर कुछ बताएं।
क्योंकि देखिए, भूमिका होता क्या है कि हमारे पूर्वज, क्यों हम एक नाम लेते हैं प्रोटोटाइप के, हम ले लें प्रेमचंद, अकेले प्रेमचंद नहीं, उस समय यशपाल भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उस समय चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी उस समय महत्वपूर्ण है, उस समय जैनेन्द्र कुमार का लेखन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो पूर्वज हैं, ये हिंदी लेखन के पूर्वज हैं, हिंदी कहानी के पूर्वज हैं। ये ना होते तो आगे की संतति ना होती, हम तो यूं कहेंगे अगर मेरे पितामह ना होते तो मैं ना होता,
कड़ी नहीं होती
मैं, हाँ मैं वो मेरे पूर्वज थे तभी तो मैं हूँ।
जी जरूर।
तो आज की हिंदी कथा इसीलिए है कि ये बड़े प्रतिभाशाली पूर्वज इस कहानी परंपरा में थे।
दिशा
तो प्रेमचंद ने एक कहानी लेखन का मुहावरा, कहानी लेखन की तरीका स्थापित किया, जिसको फिर फॉलो करते कहानी अपने अपने हिसाब से बड़ी है, बदली है, कुछ नई हुई है, कुछ पुरानी को रोका हुआ है। एक पुराना भवन है जो मरम्मत के साथ और नई मंजिलें उस पर, एक मैं कहूँगा कि उन्होंने नींव खोद दी, वह नया भवन बनता गया और आज बहुमंजिली इमारत अगर हिंदी कथा की खड़ी हुई है अलग दशकों की, तो उसके पीछे नींव में तो यही पत्थर हैं, प्रेमचंद हैं और ये सब लोग हैं, इन पत्थरों पर ही ये नींव खड़ी है हिंदी कहानी।
जरूर।
और वो नींव के पत्थर जरूर हैं पर वो शिखर के कलश से कहीं कम नहीं है।
हिंदी का भविष्य यानी कहानी का भविष्य कैसे लगता है आपको?
कहानी का भविष्य देखिए, जिस ढंग से कहानी अभी कही जाती है, जिस ढंग से कहानी अभी कही जाती है, ये कहानी का कहना बदलेगा, बदला है। प्रेमचंद जिस ढंग से कहानी कहते थे तब से कहानी बदली है। आज जो कहानी कही जाती है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसके कहने का ढंग, उसके विषय ये बदलेंगे और आगे की दुनिया जब आएगी तो और नए विषय आएंगे और अच्छे कहने वाले आएंगे। तो मैं तो हिंदी कहानी का भविष्य बहुत उज्जवल देखता हूँ, बहुत अद्भुत विकास आगे देखता हूँ जो होगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है हिंदी कहानी में और आगे भी होगा, इस बात का आप भी आश्वस्ति रखिए, मैं तो आश्वस्त हूँ ही।
डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, आपने कार्यगोष्ठी के दौरान कहा था कि कहानी हमें एक जीवन में अनेक जीवन जीने का मौका देती है।
जी जी, ये बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि कोई कहे कि मैं कहानी क्यों पढ़ूँ, कहानी आप मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहे, आप जीवन की समझ बढ़ाने के लिए, कहानी से बेहतर एक मनोरंजक तरीका नहीं है। क्या आपको मज़ा भी आता है, आपको आनंद भी आता है और आप बिल्कुल ही एक नए जीवन को समझने का मौका मिलता है आपको। आप एक आदमी हैं, मैं ज्ञान चतुर्वेदी हूँ, मैं ज्ञान चतुर्वेदी का जीवन जीऊँगा, मेरी एक कहानी बन जाएगी, पर मेरे को किसान के बारे में नहीं मालूम, मुझे एक डाकू के बारे में नहीं मालूम, मुझे एक वेश्या के बारे में नहीं मालूम, मुझे एक अध्यापक के जीवन के बारे में नहीं मालूम। ये सारे जीवन पर जो कथाएँ अगर मैं पढ़ूँगा जिनके नायक अगर ये हैं तो मैं इनके जीवन को भी जीऊँगा। तो जब मैंने कहा कि जब आप एक जीवन में 100 जीवन जीने की तमन्ना रखते हैं तो कहानी जरूर पढ़िए।
जरूर। तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं याद दिला दूं कि आज के कार्यक्रम में आप डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को सुन रहे थे और आज का हमारा विषय था हिंदी की कथा यात्रा। मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन आप श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ। विशेष धन्यवाद आज के हमारे मेहमान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को जाता है।
ये कार्य बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और अपने श्रोताओं से बात करने का मुझे मौका दिया।
ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में हमें मित्र रामा जी का सहयोग रहा। अगले कार्यक्रम तक हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
नमस्ते।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।